نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی جو ہم انشاءاللہ تعالی علم لینے جا رہے ہیں، قرآن پاک کا، اس کے الفاظ کا، معنی کا، تفسیر کا. اس علم کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیسے ہم یہ کلاس لیں گے؟ سب سے پہلے تو کسی چیز کی اہمیت آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے. جب کسی چیز کو آپ اہم سمجھیں گے تبھی انسان اس کے لیے وقت بھی لگاتا ہے، اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے. اور اگر کوئی چیز اہم نہ سمجھی جائے، تو چاہے وہ زندگی کے کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اگر آپ کے نزدیک اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، تو بہت جلدی آپ اس سے کتا جائیں گے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے اتنی محنت نہ لگائیں جتنی محنت کرنی چاہیے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت جلدی اس کو، اللہ نہ کریں، چھوڑ کے چلے جائیں، یا بددلی سے کریں، بوجھ سمجھ کے کریں. تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ کام ہے شوق کا، دل سے کرنے کا، محبت سے کرنے کا. کیونکہ جس کلام کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، وہ کلام کس کا ہے؟ کسی انسان کی بات نہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے. اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورۃ الزمر میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ کہہ دیجئے، کیا وہ جو علم رکھتا ہے اور وہ جو علم نہیں رکھتا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ علم تو روشنی ہے، علم زندگی ہے، اور جہالت اندھیرا ہے، جہالت موت ہے. تو جیسے زندگی اور موت برابر نہیں ہو سکتے نا، اسی طرح علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. اور الحمدللہ کہ جو علم حاصل کرنا ہے نا، ہمارے دین میں اس کو بھی عبادت کہا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے عبادت پہ اجر ملتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم ایسے ہی کلاس لے رہے ہیں اور اس طرح ہیں، اور کوئی شاید اس کی اتنی اہمیت نہیں. نہیں، اس علم کو بھی یہ سمجھے کہ یہ 3 گھنٹے میں عبادت میں لگا رہی ہوں. ہمارے دین میں جہاد کی ایک قسم ہے یہ، اور ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اس زمانے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ہر آبادی میں سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ کیوں نہیں ہے ایسے کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ آئیں اور علم حاصل کریں اور پھر باقیوں کو سکھائیں. اور اللہ تعالیٰ نے علم کے اوپر اتنا زور دیا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی، ظاہر ہے سورہ فاتحہ تو پہلی وحی نہیں ہے، یہ نزول کے اعتبار سے اس کی ترتیب نہیں ہے قرآن پاک کی. جیسے اب ہم کھولتے قرآن پاک سورہ فاتحہ دیکھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ تو بعد میں جیسے اس کی قرآن پاک کی ترتیب رکھی گئی، وہ اس میں پہلے نمبر پہ آتی ہے. لیکن نازل سب سے پہلی وحی کیا ہوئی؟ ایک قرآن پڑھ. پڑھنے کے اوپر اتنا زور ہے کہ پہلا ورڈ ہی آپ دیکھیں کیا ہے. یا کسی اور دین میں پڑھنے لکھنے کے اوپر اتنی زیادہ شدت سے اس کو ایمفسائز کیا گیا؟ پھر بھی اگر ہم جاہل رہیں اور علم لینے کو وہ باعث عار سمجھیں، یا یہ سوچیں کہ اس عمر میں آ کے ہم علم لیں گے تو شرم آئے گی، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں آیت نمبر 28 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरते वही हैं जो इल्म वाले बंदे होते हैं। तो अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह का खौफ दिल में आए, क्योंकि अल्लाह का खौफ आएगा तो गुनाहों से बचेंगे, तो अल्लाह ताला का खौफ दिल में लाना चाहते हैं तो इल्म लेना होगा। जो बेइल्म रहता है ना, वो बेखौफ रहता है, ना डर रहता है। और इस इल्म से आपके दर्जे बुलंद होंगे, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मुजादला में आयत नंबर 11 में, यरफाउल्लाहुल्लदीन आमनू मिनकुम वल्लदीन ऊतुल इल्म दरजात। तुम में से मोमिनों के दो लोगों के अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला बुलंद करता है दर्जे, मोमिनों के और इल्म वालों के। जिसका इल्म जितना ज्यादा होगा उसका दर्जा भी उतना ही ज्यादा होगा अल्लाह के यहाँ। कितना बुलंद दर्जा होगा। अगर चाहते हैं कि अल्लाह के यहाँ बुलंद मकाम पाए, बुलंद दर्जे पाए, तो कुरान बता रहा है आपको कि इल्म वाले अपने इल्म की बिना पे अल्लाह के यहाँ दर्जे बुलंद पाते हैं। इब्ने अब्बास ने फरमाया कि उलमा को आम मोमिनों पे 7 दर्जों की बुलंदी नसीब होगी, 7 लेवल्स ऊपर होंगे उनसे, और हर 2 दर्जों के दरमियान 500 साल का फासला होगा। यानी जितना सवार 500 साल तक चलना चाहे तो जितना फासला वो तय करता है ना, उतना ऊंचा दर्जा होगा। 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला होगा, तो सोचे 7 दर्जे बुलंदी। और जैसे जैसे दर्जे बुलंद होंगे, नेमतें ज्यादा होंगी, राहतें ज्यादा होंगी, इज्जतें ज्यादा होंगी, मकाम ज्यादा होगा, अल्लाह का कुर्ब ज्यादा होगा। और सोचे कितना कुछ मिलेगा। ये दर्जे का मतलब ऐसे ही नहीं है कि आप दुनिया में दर्जे देख लें, उसमें ही फर्क हो जाता है। तो कहां वहां के दर्जे, तो क्या बात है उनकी। हर चीज में, हर नेमत में इजाफा होगा। तो नीचे रहना चाहेंगे या ऊपर जाना चाहेंगे, ऊपर के दर्जे पाना चाहेंगे। देखिए, दुनिया में हम चाहते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बुलंद से बुलंद हो, बेहतर से बेहतर हो, शानदार हो, तो आखरत में क्यों नहीं। और इसका एक तरीका जो कुरान बता रहा है वो क्या है, इल्म। इल्म लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके साथ अल्लाह ताला खैर का इरादा करना चाहे उसको दीन की समझ अता फरमाता है। यानी जिसको अल्लाह खैर देना चाहता है ना, कोई भलाई देना चाहता है, तो उसको क्या देता है, दीन की समझ। तो अपने आप को खुशकिस्मत समझें अगर आपको दीन की समझ अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। समझ में अल्लाह ने आपके साथ भलाई का इरादा किया, आपकी बड़ी खुशकिस्मत ही है ये। ये अल्लाह की तरफ से खैर की निशानी है कि दीन समझ आने लगा। आप देखिए ना, इल्म के जरिए इंसान बाज दफा ऐसी बातें सीख लेता है कि कभी कभी छोटे से काम से भी उसको बड़े आला दर्जे मिल जाते हैं। क्योंकि उसको पता होता है ना कि इस काम से अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, इस काम से मिलेगा, ऐसे करने से मिलेगा, तो वो ज्यादा जल्दी दर्जे बुलंद उसके होते जाते हैं। इसीलिए आलिम जो है, इल्म वाला जो है, उसको आबिद पे, एक इबादत गुजार पे ऐसी फजीलत हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसी मुझको तुमसे एक अदना आदमी, कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और कहाँ इस उम्मत के आम अदना आदमी का। फरमाया इतना फर्क है एक आलिम और आबिद में। हम बाज दफा इबादत में बहुत मेहनत करना चाहते हैं, उसमें चाहते हैं कि बस आज का दिन हमें छोड़ दो, हम इबादत करें। लेकिन इबादत के ऊपर भी इल्म को फजीलत, इबादत गुजार भी मेहनत कर रहा है मगर उन्हीं चीजों को किए जा रहे हैं। जैसे एक टाइपिस्ट है और एक अनाड़ी आदमी, वो अनाड़ी भी टाइप करता है लेकिन उसकी टाइपिंग और एक टाइपिस्ट की टाइपिंग में कितना फर्क होता है। तो इसी तरह एक आलिम जो है, वो अपने इल्म की बुनियाद पे जब अमल करता है ना उसकी और इबादत करता है, उसकी इबादत में बहुत फर्क होता है उससे जो एक रटी रटाई कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने इतने बुलंद मकामात अता फरमाए इल्म वालों को, हत्ता के अपने नबी को अल्लाह ताला ने दुनिया में मबूस फरमाया, तो उनकी बेसत का एक मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आले इमरान आयत नंबर 164 में, वलकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, तहकीक अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पे। क्या एहसान किया? इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उनमें रसूल भेजा उन्हीं में से। जो क्या करता है, उसके क्या काम है? तीन काम बताए। यत्लु अलैहिम आयातिहि, वो तिलावत करता है उन पर उसकी आयात। व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है, सिखाता है उनको किताब और हिकमत। एक आयतें पढ़ के सुनाता है और क्या करता है? तज़किया करता है, उनको पाक करता है और उनको किताब की तालीम देता है। हिकमत से तो मुराद हदीस है उलमा ने, लेकिन यहाँ से क्या पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ मनसबी में क्या था? इसी किताब की तिलावत और इसी किताब की तालीम। हालांकि वो लोग तो अरबी थे, उनकी ज़ुबान थी, वो तो सबसे ज़्यादा इस ज़ुबान के माहिर थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया उनकी तरफ कि इनकी तालीम का इंतज़ाम किया जाए, इनको सिखाया जाए। वो या ये कुरान सीखने की चीज़ है, ठीक है? ये कुरान पहले देखिए आया, तिलावत भी ठीक है, तिलावत में भी क्या माना आता है कि माने को फॉलो करके पढ़ा जाए, वो भी है, लेकिन एक तालीम होता है ना, तालीम में क्या है, बतदरीज और एहतमाम के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके इल्म दिया जाए। तो कुरान पाक दूसरी किताबों की तरह नहीं है कि बस मजमून समझ लिया और दैट्स इट। इसके अल्फाज भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अल्फाज के माने भी और उनकी तफसीर भी, क्योंकि ये सब चीज़ें अल्लाह ही की तरफ से आई हैं, इसकी तफसीर भी अल्लाह ही की तरफ से है जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन नास इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, ए लोगो इल्म सीखने से आता है, यानी इल्म सिर्फ रीडिंग कर लेने से नहीं आता, सिर्फ सुनने से नहीं आता, सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं आता, सीखने से आता है। सीखने से, लिसनर होने से इल्म नहीं सीखोगे। सीखने में क्या होगा? अकल भी इस्तेमाल होगी, आंखें भी इस्तेमाल होंगी, कान भी इस्तेमाल होगा, जहन भी इस्तेमाल होगा, हाथ भी इस्तेमाल होगा, है ना? तो इल्म सीखने से आता है। कोई भी इंसान माँ के पेट से पैदाइशी इल्म लेके नहीं आता, इल्म को सीखता है तो इल्म आ जाता है, ठीक है? तो हम इल्म सीखने के लिए आए हैं। ये इल्म बड़ी दौलत है, ये अल्लाह का खौफ भी पैदा करेगी, इसकी मोहब्बत भी पैदा करेगी, गुनाहों से बचने का आपको हिम्मत भी देगी और नेकी करने के लिए कुव्वत भी देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलील इल्म कसरत से की जाने वाली इबादत से बेहतर है, यानी इंसान इबादत गुजारी में चाहे कितना ही आगे निकल जाए। बाज़ लोग कहते हैं नहीं मैं तो कुरान पढ़ती रहती हूँ घर में, मैं इतना पढ़ती हूँ। एक तो ये यहाँ पे पता चल गया ना कि सीखने से आता है, पढ़ने से, कि घर में आप किताबें पढ़ रही हैं उससे इल्म नहीं आ जाएगा। बाज़ लोग कहते हैं हमने बड़ी तफसीरें पढ़ ली, तो तफसीरें पढ़ लेने से इल्म नहीं आता जब तक आप किसी उस्ताद से ना सीखें। दूसरी क्या बात है कि इबादत से भी ज़्यादा बेहतर है। जो लोग कहते हैं कि हम बस हमने कितनी दफ़ा इसको ख़त्म कर लिया यानी पढ़ पढ़ के, तो इबादत, ये इबादत हो गई, हम इतनी तस्बीह करते हैं, या हमें तो पहले ही नमाज कुरान पढ़ना आता है, आप हमें और क्या सिखाएंगे, तो वो इबादत है, ये तालीम है, दोनों में फर्क है। तो इसमें जो जिस तरह से आपको भलाई मिलेगी, अजर मिलेगा, वो सिर्फ इबादत करने से नहीं मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि इल्म वाला इबादत गुजार से कितना आगे निकल जाता है। इसीलिए आपसे ऐसा लगना कि मैंने कलील इल्म भी कसरत से की जाने वाली इबादत से बेहतर है, थोड़ा इल्म भी। तो इल्म वाला अपने इल्म की वजह से दर्जे पाता है, अपने इल्म की वजह से आगे निकलता है, अपने इल्म की वजह से जाहिल इबादत गुजार से बेहतर होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, मेरी बात नहीं है, इसलिए इसको गौर से सुनो। तअल्लमुल इल्म, इल्म को हासिल करो, इल्म को सीखो। ये मैं नहीं कह रही, आपका हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म हमारे लिए क्या है? फर्ज है। ये नहीं कि ये नहीं कहा गया जिसका जी चाहे सीखे, जिसका जी चाहे ना सीखे, मर्द सीखें औरतें ना सीखें। ये हुक्म अल्लाह के रसूल का आम है। और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहू, जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दे रहे हैं, हमें इसको लेना है। इस इल्म की कदर को पहचानिए। और अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है, ये हदीस बयान करते हैं कि कुरआने करीम सिफारशी है, जिसकी सिफारिश कबूल होगी, और झगड़े का फरीक है जिसकी तस्दीक की जाती है, ये इसकी बात मानी जाएगी। जो शख्स इसको अपना इमाम बनाएगा, इमाम कैसे बनाया जाता है? इमाम क्या क्या कौन होता है? आप इमाम बनाते हैं ना मस्जिद में, क्या होता है फिर? जो जो इमाम कर रहा होता है आप वही फॉलो कर रहे थे, राइट? ऐसे ही है ना। तो कुरान को इमाम कैसे बनाएंगे? जो जो कुरान कह रहा है वो करता जाएगा तो ये उसे जन्नत मिले जाएगा, और जो इसे पसे पुश्त डालेगा ये इसको जहन्नुम में ले जाएगा। सुन लिया ना? जो इसको पीछे डालेगा ना, ये खुद लेकर जाएगा उसको जहन्नुम। इसका मतलब है इसकी वजह से लोग जन्नत में भी जा सकते हैं और इसी की वजह से लोग जहन्नुम में भी जा सकते हैं। ये सारों के लिए नहीं सिफारिश कर देगा कि हाँ ये सारे ही ठीक है क्योंकि उम्मत मुहम्मदी है। तो सिफारिश करने का मतलब ये है कि ये अपने पढ़ने वाले के लिए, सीखने वाले के लिए, अमल करने वाले के लिए सिफारिश करेगा जो अल्लाह ताला कबूल करेंगे। और जिस किसी के खिलाफ ये फरीक बनेगा कि इसने मेरे मुझे नहीं पढ़ा, इसने मेरे मुझे नहीं सीखा, इसने मेरे ऊपर अमल नहीं किया, तो इसकी बात मानी जाएगी। ठीक है ना? ये बात तो ऐसे सिफारशी होते हैं ना, उनकी बात नहीं मानी जाती, लेकिन ये वो सिफारशी है चाहे किसी के हक में बोले या खिलाफ बोले, इसकी बात सुनी जाएगी। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स कुरान पाक पढ़ता है वो ऐसे ही है जैसे अपने पहलुओं में नबुवत को समेट रहा है। क्योंकि ये कलाम किस पे उतरा? नबी पे। तो वो ऐसे ही है जैसे नबुवत को समेट रहा है। ये वही का इल्म है ना, ये नबी की मीरास है। मगर इसकी तरफ वही नहीं की जाती, यानी वही तो नहीं मेरे पास डायरेक्ट आ रही, मगर जो वही आई थी वही मैं अपने पास समेट रही हूं ना, तो समझ ले नबुवत को समेट रहे। और जिस शख्स ने कुरान पढ़ा फिर इसने किसी शख्स के मुतालिक ये ख्याल किया कि उसे कोई चीज इस नेमत से बढ़कर दी गई है जो मुझे अता हुई है, तो उसने इस नेमत की तहकीर की है जो अल्लाह के यहाँ बाअज़मत। ये बात समझ आई? और उस चीज की जो अल्लाह ताला के यहाँ हकीर थी उसकी ताज़ीम की है। जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको थोड़ा सा, कि यानी जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक का इल्म दिया, अब आप अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ आ रहे हैं कुरान पाक के इल्म लेने के लिए। अब क्या है, आप कोई दुनिया की चकाचौंध देखते हैं, कोई किसी के पास कोई नेमत देखते हैं, आप आपके दिल में होता है हाय काश मेरे पास भी ये हो, और हाय उसको ये मिल गया और मुझे नहीं मिला, हाय मैं इस टाइम पे अगर जॉब कर लेती तो मुझे इतने पैसे मिल जाते, और मैं देखो जॉब छोड़ के तो मैं अब इसके लिए टाइम निकाल रही हूँ, इसकी वजह से मेरे पैसों में कमी हो गई, या इसकी वजह से मेरे और हो सकता है मैं भी अपना घर इतना डेकोरेट रख लेती, हो सकता है मैं भी अपने आप को इतना सजा संवार लेती, मैं मुझे तो कपड़े बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, मुझे तो अच्छे अच्छे खाने बनाने की फुर्सत नहीं मिलती, ये बस सारा इस क्लास का कसूर है, इस कुरान का कसूर है। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जिसने कुरान पढ़ा फिर उसने किसी शख्स के मुतल्लिक ये ख्याल किया कि उसको, मसलन किसी और के बारे में उसने सोचा कि उसको जो चीज मिली है वो इस नेमत से बढ़ के है जो मुझे मिली है, उसको ये नहीं कदर के देखो मैं मुझे जो मिल रहा है वो कितनी बड़ी चीज है, मुझे तो कुरान का इल्म मिल रहा है पर इसके पास तो ये दुनिया के चंद टके आ गए, मुझे जो नेमत मिल रही है उसके सामने हर नेमत हकीर है। तो उसको ऐसे नहीं लगता, उसको उलट लग रहा है, उसको हाय हाय निकल रही है कि उसके पास क्या है। तो उसने ऐसे शख्स ने क्या किया, उसने तहकीर की है, उसने इस चीज को कम जाना है, इसको हकीर जाना है, जो अल्लाह ने ये नेमत उसको कुरान की दी है ना उसको वो उसने हकीर समझा है, इसलिए कि वो इसके मुकाबले में दूसरों को देख के हाय हाय करता है और इसके मुंह में पानी आता है और इसको ये होता है कि वो मेरे से आगे बढ़ गए, मैंने अपने साल इसमें लगा दिए, लोगों ने कितनी कमाइयां करनी और कितनी आगे निकल गए, और वो चीज जो अल्लाह के यहाँ हकीर है यानी ये दुनिया उसकी इसने ताज़ीम की है, उसकी इज्जत कर रहा है। तो ये बात बहुत सोचने वाली है, हम जो इंशाल्लाह ताला अपना सफर शुरू करने वाले हैं तो इस बात को जहन में रखिएगा, क्योंकि आपके सामने हो सकता है लोग आए और आपके मुंह में कभी पानी आए उनका कोई नेमत देख के, और आपको ये हो कि चलो छोड़ो इसको मैं उधर जाती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं कि हमें कुरान सीखने की तरगीब फरमाई और इसकी फजीलत भी इरशाद फरमाई। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इसकी तरगीब देते थे, मोटिवेट करते थे लोगों को कुरान सीखो और इसकी फजीलत बयान किया करते थे ताकि लोगों में शौक पैदा हो, और हुक्म फरमाया कुरान सीखा करो, ये जो मैं आपको हदीस पहले बताई, और इरशाद फरमाया कुरान अपने पढ़ने वाले के पास कयामत को ऐसे वक्त में आएगा जबकि वो इसका बहुत ज्यादा मोहताज होगा। आपको पता है ना कयामत का दिन कितना मुश्किल दिन है, और उस दिन इंसान बड़ा मोहताज होगा, तो उस दिन ये कुरान आएगा और आके क्या करेगा, एक बहुत हसीन शक्ल में उसके पास आके पूछेगा मुझे पहचानते हो, सुभान अल्लाह, वो कहेगा तुम कौन हो, कहेगा मैं वही हूँ जिससे तू मोहब्बत करता था, जिसकी तू इज्जत करता था, मेरी वजह से तू रातों को जागता था, दिन को पढ़ने की तमन्नाएं रखता था। इस पे वो कहेगा शायद तू कुरान है, क्योंकि वो वाकई ऐसे करा करता था। फिर वो उसे अल्लाह के हजूर लेकर आएगा, ये कुरान अल्लाह के हजूर लेकर आएगा। अब क्या होगा, शहनशाही दाएं और जन्नत बाएं तरफ कर दी जाएगी, बादशाही ताज इस शख्स के सर पर रख दिया जाएगा और उसके मुसलमान वालदैन को भी दो हुल्ले पहनाए जाएंगे जिनकी कीमत दुनिया से भी कई गुना ज्यादा होगी। वो पूछेंगे ये हमें कैसे मिल गए जबकि हमारे आमाल तो इस लायक नहीं थे। उनको कहा जाएगा तुम्हारी तुम्हारे बेटे या बेटी की बदौलत जो कुरान की तिलावत किया करता था, इसको सीखा करता था, इसको पढ़ा करता था, इसको इसका इसको साथ लेकर चलने वाला था। सुभान अल्लाह, आज हो सकता है किसी के दिल में इतनी अहमियत ना हो इस कलामे पाक की, या ऊपर ऊपर से वो कहते तो सारे ही मुसलमान है कि हाँ कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे, मगर हम अपने अमल से दिखाते हैं कि हमें इस चीज के यकीन नहीं है दिल में, उस तरह से यकीन नहीं है कि जैसे हमें ये यकीन है कि इस वक्त दिन निकला हुआ है। कोई नहीं इस वक्त कहेगा कि नहीं इस वक्त रात है, किसी को भी शक नहीं, सबको पता है दिन है। क्या इसी तरह ये यकीन है, ये कुरान जो है हमारा सिफारशी बनेगा, ये हमारा दुनिया और आखरत का साथी बनेगा, इसका हमें फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। इसके फवायद, इसके अजायब, इसकी बरकात कितनी है, कितनी ज्यादा है, ये तो आपको जब कुरान के साथ आप ताल्लुक जोड़ेंगे ना, तो जब इसकी बरकतें खुलने लगती हैं और जैसे जिंदगियों में तब्दीलियां आती हैं, और फिर जैसे एक कदम से दूसरा और दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा पड़ता ही चला जाता है, वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? कभी ये सोचा? शुरुआत उस पहले कदम से हुई थी जो आपने उठाया था इस कुरान की तरफ, फिर आगे आपके कदम बढ़ते ही गए, कहीं कोई हिफ्ज कर रहा है, कहीं कोई तजवीद सीख रहा है, कहीं कोई इसके और उलूम सीख रहा है, कहीं कोई हदीस सीख रहा है, लेकिन पहला कदम तो इसको सीखने से ही शुरू हुआ था ना। वो जो सारे उलूम बाद में आप ले रहे हैं, वो इसी की बरकतों से शुरू हुए थे कि जब आपने पहली दफा इसके साथ अपने ताल्लुक को मजबूत किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आहिस्ता तिलावत करने वाला, इसकी इस कुरान की आहिस्ता तिलावत करने वाला छुपा के सदका करने वाले की तरह, और इसकी ऊंची आवाज में तिलावत करने वाला एलानिया सदका करने वाला करने वाले जैसा। यानी इसका मतलब है कि ऊंची आवाज में भी कर सकते हैं लेकिन आहिस्ता करोगे, यानी दो लोगों के रियाकारी ना हो इस खातिर जरा आहिस्ता आहिस्ता करोगे तो वो और भी अच्छा है। कभी हो जाता है ना कि इंसान ऊंची आवाज में इसलिए तो नहीं करता, मगर दिल में ख्याल आ ही जाता है। इसी तरह हजरत अबू दरदा जो थे, वो उनके पास अबू लईस आए, वो दमिश्क की मस्जिद में बैठे हुए थे, तो ये आके कहने लगे, ऐ अबू दरदा, मैं आपके पास मदीना से एक हदीस सुनने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि आपने उसको बिना वास्ता यानी डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अबू दरदा ने कहा, क्या सिर्फ यही मकसद है, तिजारत वगैरह या कोई और मकसद तो नहीं है? कहने लगा, नहीं, मैं सिर्फ इसी लिए आया हूँ। अबू दरदा ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, फरमाते थे, जो शख्स इल्म की तलब में एक रास्ता तय करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता आसान फरमा देते हैं। यानी इल्म सीखने के लिए आप जिस जब रास्ते पे चलते हैं, यानी अब आप ये इल्म के रास्ते पर आ रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत का रास्ता क्या कर देते हैं? ईजी कर देते हैं, आसान कर देते। जन्नत तक पहुंचना फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, फिर जन्नत आसान हो जाएगी आपके लिए, उसको पाना आसान हो जाएगा। और फरमाया, और फरिश्ते तालेब इल्म पर खुश होकर उसके सामने अपने पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते किस पे खुश होते हैं? स्टूडेंट्स पे। ये कुरान के तालेब इल्म है, ये आम लोग नहीं है, उनके सामने अपने पर बिछाते हैं। और इल्म वाले के लिए आसमान और जमीन की कुल मखलूक इस्तगफार करती है। सुभान अल्लाह। और मछलियां पानी की तहों में इस्तगफार करती हैं। अब कि आप मछलियां देखें तो सोचिएगा कि इल्म वाले के लिए ये मछलियां भी इस्तगफार करती हैं। और इल्म वाले की फजीलत इबादत करने वाले पर ऐसी है जैसे 14वीं के चांद की फजीलत तमाम सितारों पे। 14वीं का चांद कैसे चमकता है ना सितारों के बीच में, इसी तरह एक इल्म वाला इबादत गुजार के मुकाबले में। और जो इल्म वाले होते हैं, उलमा होते हैं, वो अंबिया के वारिस हैं, क्योंकि अंबिया ने कोई दिरहम दिनार मीरास में नहीं छोड़ा होता, उनकी विरासत में कोई जायदादें नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उनकी विरासत क्या है? ये इल्म है, दीन का इल्म, वो उन्होंने छोड़ा है। अब कौन है जो इस मीरास को समेटना चाहता है, कौन है जो उनका वारिस बनना चाहता है, कौन है अंबिया की मीरास में हिस्सा लेना चाहता है? अंबिया की मीरास इल्म है, सो जिस किसी ने इसे हासिल किया उसने बहुत बड़ा हिस्सा वसूल कर लिया। सुभान अल्लाह। ये है इल्म की फजीलत, ये आम चीज नहीं है, समझ लें, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में से हिस्सा मिल रहा है, उनकी विरासत में से। हम उस वक्त तो नहीं थे कि हम वहां पे, कोई उनकी तो कोई चीजें थी नहीं ऐसी, कोई आप उनकी कोई मकान ले लेते या कोई और चीज़ ले, सोचें उनकी विरासत की, आपकी कोई प्यारा हो और वो दुनिया से चला गया हो, तो उसकी जो चीज़ पीछे उसने छोड़ी होती है, आप कितने शौक से उसको रखते हैं कि मेरी उसकी फलां की निशानी है, ये फरहान की मीरास है। किसी की वालदा दुनिया से चली जाए, उनके कपड़े संभाल संभाल के रखते हैं, उनकी चीज़ें संभाल संभाल के रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मीरास ये इल्म है, आप इसको कितने शौक से लेना चाहेंगे। और आपको उनसे मोहब्बत है तो फिर तो सारा आंखों पे रखेंगे इसको। और इल्म की एक और फजीलत देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद में तशरीफ लाए, वहाँ पे दो मजलिसें लगी हुई थी, एक में अल्लाह का जिक्र हो रहा था और दूसरे में इल्मी बातें हो रही थी, इल्म के मसले मसाइल के ऊपर बातें हो रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों मजलिसें खैर पे हैं, यानी दोनों ही मजलिसें अच्छी हैं भलाई पे, लेकिन एक मजलिस दूसरी से बेहतर है। ये जिक्र करने वाले लोग अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, वो चाहे तो अता कर दे और चाहे तो ना दे, और ये लोग जो इल्म सीख रहे हैं सिखा रहे हैं, और मैं भी मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ, लिहाजा ये उनसे अफजल है। फिर इन्हीं लोगों के पास बैठे, इल्म वालों के साथ बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेफर किसकी मजलिस को किया, जो इल्म सीख रहे सिखा रहे थे। कितनी बाबरकत है ये मजलिस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा था उस मजलिस को छोड़ के इस मजलिस को अपनाया। इसी तरह अबू दर्दा फरमाते हैं कि एक मसला सीखना, इल्म का एक मसला सीखना रात भर के कयाम से मुझे ज्यादा पसंद, मैं रात भर अल्लाह के आगे खड़ा रहूं कयाम करूं, उससे बेहतर कि मैं इल्म का एक बात इल्म की सीख लूं। और एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह के लिए इल्म हासिल करता है, अब ये भी हम बात करेंगे कि नीयतें क्या हैं हमारी, इंशाल्लाह उस पर भी बात होती है, लेकिन यहाँ पे ये कि जो कोई अल्लाह के लिए इल्म हासिल करता है वो दिन के रोजेदार की तरह है और रात की इबादत गुजार की तरह है, और जो इल्म का सिर्फ एक चैप्टर सीखता है एक बाब सीखता है उसके लिए अबू कुबैस पहाड़ के बराबर, उस सोने से बेहतर है जिसे वो अल्लाह की राह में खर्च करे। अबू कुबैस पहाड़ जो है ना, जमीन पे जो पहला पहाड़ था अरब के पास ही है, तो वो इतना बड़ा पहाड़ है, उसके बराबर अगर कोई इंसान सोना उसके पास हुआ और वह सारा सोना अल्लाह के रास्ते में दे देना, उससे बेहतर है जस्ट वन चैप्टर इल्म का सीखना। मैं कहती हूँ हमने तो कभी इसको ऐसी कदर ही नहीं दी, ऐसी इसकी अहमियत पहचानी ही नहीं कि इसकी फजीलत कितनी है, इसके ऊपर आपको अजर कितना मिल रहा है, आपके बैठने पे, आपके सुनने पे, आपके लिखने पे, आपके इसके लिए अपना जहन इस्तेमाल करने के, आपके याद करने के, एक एक चीज के ऊपर आप कितना बड़ा अजर पा रहे हैं, जब एक चैप्टर सीखने के ऊपर ये है कि इतने बड़े पहाड़ की माने आपने सोना सदका कर दिया, कितना बड़ा अजर मिले आपको। लेकिन हो सकता है आप $10 अल्लाह के रास्ते में देने को तो अजर समझे, लेकिन कुरान की तालीम लेने को इतनी बड़ी चीज ना समझे। 10 मिनट अगर आपको ज्यादा बैठना पड़ जाए तो उसको वो आपके लिए भारी हो जाए। हाँ, लेकिन आपको ये हो के हाँ जी मैं भाग के जाती हूँ और जुमा पढ़ने चली जाती हूँ, गो कि जुमा औरत के लिए फर्ज है ही नहीं। यार यहाँ पे आप देख रहे हैं इबादत से ज्यादा क्या है, इल्म की फजीलत। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मुबारक जो थे वो बिस्तरे मर्ग पे थे, तो एक आदमी उनके पास बैठा हुआ था, उनके लिए कुछ इल्मी मजामीन लिख रहा था। तो किसी ने कहा इस हालत में भी आप ये इल्म सीख रहे सिखा रहे और बता रहे हैं उनको और कुछ मजामीन लिखा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, इस हालत में भी आप उस पे हैं, यानी बिल्कुल यानी बिस्तरे मर्ग पे पड़े हैं। इरशाद फरमाया शायद कोई फायदेमंद बात ऐसी मिल जाए जो पहले आज तक ना मिली, नहीं हो सकता है मुझे आज इल्म में कोई बात ऐसी समझ आ जाए, कोई ऐसी मिल जाए जो पहले ना मिली। तो اسی طرح معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ علم سیکھو، کیونکہ اس کا سیکھنا نیکی ہے، اس کی طلب عبادت ہے. یہ جو یہ آپ طلب علم کے لیے آئے ہیں نا، طالب علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا پیارا ورڈ ہے ویسے اردو میں نا، طالب علم. آپ طالب علم ہیں نا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ سے تو نہیں اتنا کچھ پتہ چلتا، آپ طالب علم. طالب علم کیا مطلب ہوا اس کا؟ علم طلب کرنے والا، علم چاہنے والا. واقعی علم طلب کرنے والے ہیں، ہمارے باندھے کے تو نہیں بیٹھے گا. آپ کو تو پھر علم کی ہرس ہونی چاہیے، علم کا شوق ہونا چاہیے. دیکھیں ہر چیز میں، دنیا کی ہر چیز میں قناعت اچھی ہے، لیکن علم میں ہرس اچھی ہے. علم کے لیے لالچ کریں، اس کے لیے یہ نہ کریں اتنا ایک دفعہ پڑھ تو لیا، اب اور کیا پڑھنے کی ضرورت ہے. نہیں، اس میں لالچ ہونا چاہیے اور دنیا کی چیزوں میں قناعت ہونی چاہیے. ہمارا اپوزٹ ہے، علم میں ماشاءاللہ ہم بہت قناعت والے ہیں. تو بس کافی ہے نا، نہیں کافی ہے، زیادہ نہ ہو جائے. ابھی ہم آئے ہی نہیں کلاس میں، پہلے ہی ہمیں یہ فکر پڑ گئی کہیں زیادہ نہ دے دیں کچھ کام، کہیں زیادہ نہ ہو جائے، کہیں برڈن نہ پڑ جائے ہم پہ. پہلے ہی خوف زدہ ہے دنیا کے معاملے میں، دنیا آتی بھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کی قدر نہیں ہے نا ابھی ہمیں. پھر آگے فرمایا، یہ لمبی بات ہے تو آپ یہ ساری بات سنیں، اس کا تکرار کرنا تسبیح کا درجہ رکھتا ہے. تکرار کرنا کیا یعنی؟ اس کو دہرانا، اس کی ریپیٹیشن، اس کو ریوائز کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا، ذکر کرنا. جیسے آپ لوگ ماشاء اللہ اپنے گروپس میں بیٹھتے ہیں، اس کی تکرار کرتے ہیں نا، ریپیٹیشن کرتے ہیں، اسی کو ریوائز کرتے ہیں. تو یہ کس کا درجہ رکھتا ہے؟ تسبیح کا. اس میں گفتگو کرنا، مذاکرہ کرنا، تحقیق کرنا جہاد ہے. سبحان اللہ. اب کہتے ہیں نا عورتوں کے لیے تو کیا جہاد ہے، دیکھو ہمارے لیے یہ ہے. ہمیں بڑھ بڑھ کے ان کاموں کا شوق ہوتا ہے کہ جو آدمیوں کو ملے وہ ہمیں کیوں نہیں مل جاتے، ہم وہ کرنا چاہتے. دیکھیں آپ کے لیے جو وہ ہے، آپ ان چیزوں کو، ان کاموں کو کر کے وہی فضیلت، وہ درجے پا سکتے ہیں. پھر اور کسی جاہل کو اس کا سکھانا صدقہ ہے. اگر آپ نے کسی کو، جاہل کو یعنی جو لا علم ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، اگر آپ نے اس کو یہ سکھا دیا تو یہ صدقہ ہے. اور اس کے اہل پر اس کو لگانا قرب الہی کا ذریعہ ہے. یعنی جو اس کا اہل ہے، جو اس کا مستحق ہے، اس تک اس کو پہنچانا اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں تو اس کے ذریعے آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. سن لو، علم اہل جنت کے مراتب کا راستہ ہے، یعنی مرتبے بلند کرنے کا ذریعہ ہے. وحشت کے وقت انس کا ذریعہ ہے، یعنی جس وقت انسان وحشت میں ہو، جیسے کہتے ہیں نا کبھی بہت وحشت زدہ ہو رہا تھا، اس وقت یہ آپ کی مانوس کرنے کے لیے، جیسے کوئی ساتھی ہوتا ہے نا، اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ مانوس ہو جائیں، یہ اس کا اس وقت کے لیے. سفر میں ساتھی اور رفیق ہے، آپ کسی سفر میں بھی چلے جائیں، کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ، یہ قرآن آپ کا ساتھی اور رفیق ہے. تنہائی میں ہم کلام ہے، آپ اکیلے ہوتے ہیں نا، دل گھبراتا ہے تو یہ آپ سے ایک بات کرے گا. خوشحالی میں رہنما ہے اور تندرستی میں مددگار بنتا ہے. خوشحالی ہے، آپ کو کوئی خوشیاں ملی ہیں، بہت پیسہ مل گیا، بہت کوئی اور اچھی نعمت مل گئی، اس میں آپ کی رہنمائی کرے گا کیسے خرچ کرو، کیسے چلو آپ. اور اگر تنگ دستی آ گئی ہے نا، اس میں مددگار بنتا ہے، کیونکہ صبر کا بتاتا ہے. آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے، آپ کی تنگی تکلیف دکھ مصیبت میں آپ کا مددگار بنتا ہے، آپ کے دل کو اتنی ڈھارس دیتا ہے، تسلی دیتا ہے. مجلس احباب میں زینت ہے، یعنی دوستوں میں کیا ہے، ان کے لیے زینت ہے، دوست اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، جب دشمن ہوتا ہے اس کے خلاف ہتھیار ہے. کیسے؟ کس طرح سے؟ کہ اس کلام کے جو سچے اس کو لے کر چلنے والے ہیں نا، جب وہ کسی سے بات کریں گے تو ان کے لیے یہ ہتھیار ثابت ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے وہ غلبہ پا جائیں گے. اس کی بدولت اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بلندی بخشتی ہے. और ऐसे बुलंदी देते हैं कि वो क्या बुलंदी उनको मिलती है इसकी वजह से कि वो खैर के कामों में इमाम बनते हैं, कायद बनते हैं, लोग इनको फॉलो करने लगते हैं, लोग इनके बात की को फॉलो करते हैं, इनके जो अफ़ाल हैं उनमें इनको फॉलो करते हैं, फरिश्ते इनकी दोस्ती की तरगीब देते हैं, फरिश्ते इनसे दोस्ती के ख्वाहिशमंद होते हैं, इन पर अपने पर फैलाते हैं और हर खुश्क और तर चीज, हर खुश्क और तर चीज का मतलब क्या, सारी ही चीजें, सारी मखलूक हो गई ना, खुश्क है या तर है सब, और समंदर की मछलियां और जमीन के कीड़े मकोड़े, ये जो जमीन पे आपको बग्स चलते हुए नजर आते हैं, और जंगल के दरिंदे और जानवर, सब इसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए बताएं, सब आपके लिए इस्तग़फ़ार करने लगे कि अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे, इसलिए कि इल्म दिलों को जहालत की बजाय जिंदगी बख्शता है, आंखों की तारीकी में नूर बख्शता है, आंखें तारीक है ना, अंधी आंखों को नूर दे देता है, हमें तो पता ही नहीं किधर जाना है, टक्करे खाते फिरते हैं, गिरते पड़ते फिरते हैं, कभी इधर टकराते हैं, कभी इधर, जिंदगी का रास्ता ही नहीं पता कि किधर कौन सा सीधा रास्ता है। सुभान अल्लाह, ये आंखों को नूर दे देता है, जिस्मों की कमजोरी को कुव्वत देता है, एक बंदे को नेक और अब्रार लोगों के मकाम तक पहुंचा देता है ये इल्म। आप बनना चाहते हैं नेक और अब्रार में से, होना चाहते हैं नेकोकारों में से, उनके मकाम तक पहुंचा देता है, दुनिया और आखिरत के आला दर्जात पर फाइज करता है, इसमें गौर व फिक्र करना, जैसे हम करते तफसीर पढ़ रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं ना, उसमें आयत की डेप्थ में जा रहे हैं, रोजा रखने के बराबर है। सुभान अल्लाह, इसका मुजाकरा, मुजाकरा मतलब क्या, डिस्कशन जो इसके ऊपर होती है, रात के कयाम के बराबर है, सिला रहमी इसी से कायम होती है। आप देखें जब इंसान कुरान की तरफ आता है ना, रिश्तों को जोड़ने की फिक्र करना शुरू कर देता है, उसे पहले परवाह ही नहीं होती, कुरान की तरफ नहीं आता, हलाल और हराम की तमीज इसी से हासिल होती है, इल्म इमाम है, अमल इसका ताबे है, अमल बाद में आता है, यानी इल्म इमाम है, पहले इल्म आएगा तो अमल आएगा ना, और क्या है, ये सआदत मंदों को हासिल होता है, खुश नसीबों को हासिल होता है, और बदनसीब इससे महरूम रहते हैं। तो पूरी बात यहाँ तक मुकम्मल है, ये वो बड़े बदनसीब हैं जो इससे महरूम हो जाते हैं। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, मेरे इल्म में कोई चीज जिहाद फी सबीलिल्लाह से अफजल नहीं, यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह जो है सबसे अफजल चीज है, लेकिन सिवाय एक चीज के, एक चीज है जो इससे भी ज्यादा अफजल है, वो क्या है, तलब इल्म, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी आगे, इल्म हासिल करना। अब ये कोई साइंस का, कैलकुलस, मैथ, ज्योमेट्री, इसका इल्म की बात नहीं हो रही, आन के इल्म की बात हो रही है। और फरमाया, खूब सुन लो कि इल्म को हासिल करो और इल्म के लिए ठहराओ, तहम्मुल और वकार सीखो। समझ आई ये बात, इल्म के लिए क्या सीखो, ठहराओ, आपकी तबीयत में ठहराओ आए, तहम्मुल आए, और वकार, इज्जत का ख्याल रखें, ऐसे ना बन जाए कि दूसरा बंदा देख के कहे कि पता ही नहीं चल रहा कि ये इल्म वाला है कि जाहिल है, इसमें और दूसरे में फर्क ही नहीं है, कुछ वकार होना चाहिए आपके अंदर, डिग्निटी के साथ रहेंगे, और सब्र तहम्मुल होना चाहिए, ये नहीं कि आज ही मुझे सारा सिखा दो, अभी सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाह पे बात हो रही है और आपको ये पढ़ी नहीं है कि बस आगे क्या है और इस मसले का क्या हाल है और उसका क्या, नहीं, तहम्मुल तहम्मुल, और ठहराओ, तबीयत में ठहराओ पैदा करें, जल्दबाजी नहीं। अगली बात मैं पढ़ जाती हूँ, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन आगे ये इसी तरह है तो इसलिए मुझे पढ़नी पड़ेगी इस पूरे, जिसे इल्म सीखो उसके सामने तवाज़ो इख्तियार करो, चलें इसको तो आप छोड़ दें, और शागिर्दों के पास भी तवाजो से रहो, यानी अपने शागिर्दों के सामने भी आजी से रहो, यानी कि मैं बड़ी चीज़ हूँ और मेरे ये स्टूडेंट हैं, मैं इनके सामने बहुत बड़ी आलिमा बन के बैठ जाऊँ और ये मेरे अंडर हूँ और इसको डांटा और उसको इधर किया और हटो परे बचो इधर, ये नहीं, उनके सामने तवाजो इख्तियार करो। इसके जरिए उलमा का मुकाबला ना करो कि अब मुझे तो इससे भी ज़्यादा आता है जी, आप क्या चीज़ हो, और जो बे इल्म है उनसे बहसें ना करते फिरो, यानी अब आप चल पड़े, अभी आपने एक सूरत सीखी नहीं, एक पारा किया नहीं, अब आप चल पड़े घर वालों के साथ बहसें कर रहे हैं। भाई जो नादान है जिनको अभी इल्म नहीं है, और इससे बहस करने के लिए नहीं आपने इल्म सीखा, ये आप बहुत शौक होता है लोगों को कि जब नया नया इल्म आता है ना तो फौरन बहसें करने चल पड़ते, उसको बिठाया उससे बहस, हमें तो पता चला ये तो बिदत है, फलानी चीज तो हराम है, तुम तो ये कर रही हो, तो नहीं बहसें ना करें अभी। ऐसा इल्म सीखो जो अल्लाह की इबादत में तुम्हारे लिए आर ना बने, और इबादत यूं करो जो तलबे इल्म में रुकावट ना, यानी इसके जरिए आप आपकी इबादत अच्छी हो जाए और इबादत भी ऐसी हो जो कि इल्म को तलब करने में रुकावट ना बने। ऐसे लोगों की तरह ना बनो जो इल्म को छोड़ के इबादत में लग गए, हत्ता के जब जिस्म सूख गया और खूब लागर हो गए तो तब वो तलवारें सोच कर लोगों के मुकाबले में खड़े हो गए। ये बात खारजियों की हो रही, खवारिज लोग की, अगर इल्म हासिल किया होता तो कभी ऐसा ना करते खारजियों ने जो किया था। और इल्म के बगैर अमल रास्ते से हटे हुए शख्स की तरह, वो जिस कदर भी भागेगा दूर ही होता जाएगा, उसमें से इसलाह की निस्बत फसाद की सूरतें ज्यादा निकलेंगी। तो इनसे पूछा गया है, अबू सईद आपने ये बातें कहाँ से हासिल की हैं? कहने लगे मैं इल्म के इस रास्ते में 70 बदरी सहाबा से मिला हूँ और 40 साल तक वतन से बाहर सफर में बसर किए, तब मुझे ये इल्म की बातें हुई। किसी ने पूछा ना ये इतनी हिकमत की बातें आपको कहाँ से हैं, तो देखो इन्होंने बदरी सहाबा से इल्म लिया और 40 साल तक अपने वतन से बाहर सफर में रहे इल्म के लिए। आपको तो बना बनाया पका पकाया घरों में मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। और हमारे में से कौन होता जो घर छोड़ के, हम तो साथ कहीं करीब कहीं जाना हो ना वहाँ तक भी नहीं पहुँचते, अपने मोहल्ले की मस्जिद में ही कोई तालीम की मजलिस हो रही हो वहाँ तक नहीं जाते, तो कुजा ये कि हम घरों को छोड़ के हम कहीं सफ़र में निकल जाते हैं, और वो भी एक दो दिन नहीं 40-40 साल। हाँ कोई कैम्ब्रिज जा रहा हो, ऑक्सफोर्ड जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए दिल बहुत बड़े होते हैं, वालदैन के भी बहुत बड़े होते हैं, हमारे अपने भी होते हैं, और हमारी आंखें भी ऐसे बस मुतासिर उतनी होती हैं, इतने हम इम्प्रेस होते हैं कि आंखें खुल जाती हैं, अच्छा वहाँ पे गया हुआ है, हार्वर्ड से पढ़ रहा है, अच्छा फलानी जगह गया हुआ है, चाहे वो डॉर्म में रह रहा है चाहे कहीं है, लेकिन हम कितने इम्प्रेस होते हैं। लेकिन इल्म के लिए अगर कोई घर में रहते हुए भी चंद घंटे निकाल ले तो हमें पता नहीं इतनी ज़्यादा एक परेशानी हो जाती है कि क्यों ये अपना गोया के अल्लाह माफ़ करे अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। कितनी फजीलत है इसकी आप अंदाज़ा कीजिए, कितनी फजीलत है, कौन से कैम्ब्रिज में और हार्वर्ड में पढ़ने वाले को और प्रिंसटन में पढ़ने वाले को ऐसी फजीलतें हासिल होंगी जो इस शख्स को हासिल हो। लेकिन आज अफसोस है कि इसकी कदर ना हमने जानी जो इल्म ले रहे हैं, ना अपनी मुसलमान उम्मत के अंदर कोई इसकी कदर व कीमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि अल्लाह ताला सिर्फ इल्म को कब्ज करके नहीं उठाएंगे बल्कि इल्म वाले उठते जाएंगे हत्ता के कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा, कि इल्म वाले उठते जाने, अल्लाह ताला इल्म को कैसे उठा लेंगे, इल्म वाले ही नहीं बाकी रहेंगे, कोई ये इल्म सीखेगा ही नहीं जाहिर है, और जो इल्म सीख चुके थे वो दुनिया से रुखसत होते जाएंगे, तो बस दुनिया में कौन रह जाएगा, सिर्फ जाहिल रह जाएंगे। इसलिए इल्म हासिल करो और उससे पहले हासिल कर लो कि ये इल्म दुनिया से रुखसत हो जाए, इससे पहले ले लो। अब्दुल्ला बिन मुबारक जिनकी मैंने आपको बिस्तर मर पे होने की बात बताई है ना, उनसे किसी ने पूछा कि अगर अल्लाह ताला आपको बता दें कि आप आज शाम फौत हो जाएंगे तो आप क्या काम करेंगे बताएं, तो फरमाया मैं इल्म हासिल करूंगा, इल्म की तलब में वो दिन गुजारूंगा। कि इतने वो शौकीन थे इल्म लेने। इसी वजह से जिहालत नहीं थी वहां पे। आज जिहालतें, शिर्क, बिदात उम्मते मुस्लिमा में, बेहयाइयां, अल्लाह की नाफरमानियां, गुनाह खुल्लम खुल्ला, फहाशी, ये सब कुछ क्यों नजर आ रहा है आपको? इल्म ही नहीं, इल्म है ही नहीं। वैसे सारे अपने आप को बहुत आलिम समझते हैं, हर एक ही समझता है हमें सब कुछ पता है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। मगर ये पूछा जाए कि कितना कुरान की तालीम आपको मिली है, कितना कुरान आपने सीखा है, कितनी दफा पढ़ा है, या कभी पढ़ा भी है, सीखा भी है या नहीं, किसी से, किसी टीचर से बाकायदा आपने सीखा है? तो नहीं, हमने बस हम पढ़ते रहते हैं, हम वो टीवी पे देख लेते हैं प्रोग्राम। ये इनके इनके हसूल के लिए इतनी कोशिश है कि वो टीवी पे कोई प्रोग्राम देख लेते हैं, और बाज़ तो वो भी नहीं करते, लेकिन सब समझते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा फील्ड है, बाकी उसमें नहीं, दुनिया के और किसी में कुछ कोई नहीं कहेगा कि मैं कोई आर्किटेक्ट की किसी ने तालीम नहीं ली होगी तो कोई नहीं कहेगा कि मैं आर्किटेक्ट हूँ। कोई डॉक्टर नहीं है तो फिर कोई नहीं कहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, किसी ने तालीम ना ली हो। इंजीनियर की तालीम नहीं ली होगी तो कोई नहीं कहेगा मैं इंजीनियर हूँ। लेकिन ये एक वाहिद फील्ड है जिसमें हर कोई कहता है कि मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ, चाहे उसने कुछ भी पढ़ाना हो। कहते हैं आप हमें पढ़ाएंगे, आप हमें क्या पढ़ाएंगे, हमें तो पहले ही सब कुछ आता है। लेकिन जो जितना जितना ये इल्म हासिल करता जाता है ना, उतना ही उसको ये अंदाजा होता है कि मैं कितना बड़ा जाहिल, यकीन करूं। अभी आज आपको शायद लग रहा होगा हमें सब कुछ आता है, हम कुरान में क्या पढ़ेंगे, क्या ऐसी कौन सी खास बात हो। जितना जितना आप पढ़ते जाएंगे ना, यकीन करें आपको हर स्टेप पे पता चलेगा हम कितने जाहिल थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। और जो दूसरी दफा पढ़ेंगे वो भी कहेंगे कि भाई ऐसे लगता है हमने तो पहली दफा पढ़ा, हमें तो ये बातें आज समझ आ रही हैं। तो शायद पिछली दफा जब आपने पढ़ा हो तो आपकी वो सिचुएशन ना हो जो आज आपकी सिचुएशन है। आज जिस सिचुएशन में है उसके मुताबिक वो आयतें जो आपको आज समझ आएंगी शायद कल समझ नहीं आएंगी। इसी तरह बाज लोग डरते हैं कि इल्म ले लिया तो अमल करना पड़ेगा, हाँ तो अमल तो हमसे होगा नहीं तो फिर क्या फायदा इल्म लेने का। तो इस बारे में भी ये सुने, ऑन बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक आदमी अबू जर गफ्फारी की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा मैं इल्म हासिल करता हूँ मगर मुझे डर लगता है कि अमल नहीं हो सकेगा और फिर इल्म तो ज़ाया हो जाएगा। आपने इरशाद फरमाया इल्म को अपना तकिया बना लेना इससे बेहतर है कि तू जहालत को अपना तकिया बना, यानी इल्म लेके रहना इससे बेहतर है ना, ये ज्यादा बेहतर है कि तू जाहिल रहे इस खौफ से कि भाई अमल नहीं होगा, अमल नहीं होगा। इससे बेहतर अपने आप को समझ रहा है कि मैं जाहिल ही रहूं, उससे बेहतर है तू इल्म तो लो, ये जहालत से बेहतर है। फिर वो शख्स अबू दरदा के पास गया और अपनी बात दोहराई तो अबू दरदा ने फरमाया लोगों का हशर उसी हालत में होगा जिस पर वो मरे होंगे, इल्म वाला उठाया जाएगा और जाहिल को जाहिल उठाया जाएगा क्यामत के दिन। तो जिस स्टेट में हैं आप उसी स्टेट में उठेंगे। इसी तरह बाज लोगों को जॉब्स बहुत प्यारी लगने लगती हैं, पैसा और वो ज्यादा बड़ी चीज लगने लगता है कि ये इल्म तो बाद में भी ले लेंगे, कोई बात नहीं, पैसे अभी कमा लें। फौरन लोगों को माशाल्लाह जॉबें भी मिलना शुरू हो जाती है ना जब वो कुरान की तरफ आते हैं, क्योंकि शैतान तो एक्टिव है और अल्लाह ताला आजमा भी लेता है कि कौन इनमें से हैं जो साबित कदम रहते हैं, जो वाकई जो आज आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी नई रजिस्ट्रेशन आई हैं। याद रखिएगा अल्लाह आजमाएगा आपको, आपको टेस्ट करेगा कौन है इनमें से जो मेरे कलाम के काबिल है और कौन खसो खाशाक है, ऐसे ही हैं बस तिन के। वो जो नहीं ऊपर ऊपर पानी के ऊपर ऊपर ऐसे ही बह रहे होते हैं, उनका कोई वेट नहीं होता, वो ऐसे ही भूसा से होते हैं, वो निकल बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो एक ही जरब में वो टूट फूट जाएंगे। उनको बस एक ही जरा सी देर होगी, छोटा सा इम्तिहान आएगा, उसमें कोई आपको बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब इम्तिहान पड़ गया, कुरान करूं कि ये करूं, दिल कहेगा कुरान करूं, ये भी होगा नहीं, थोड़े पैसे कमा लो, रोज रोज तो ये चांस नहीं मिलता। उस वक्त क्या इंसान के अंदर एक कश्मकश जारी रहती है, फिर वो क्या फैसला करता है। अब जाहिर है एक जमीर नाम की चीज तो अंदर है ना, अब कोई खैर तो अंदर थी जो इंसान इस तरफ आया, उसने कहा कि मैं सीखता हूँ। तो अब वो जो अंदर खैर है ना, वो उसको भी चैन से नहीं बैठने दे रही, और ये जो लालच है उसने भी इसकी नींद हराम की हुई है कि पैसे कमा ही लूँ तो अच्छा, कितनी ज़रूरतें मेरी पूरी हो जाएंगी, कितने मेरे काम हो जाएंगे। तो फिर इंसान क्या फैसला करता है, तो कोई बात नहीं, अभी मैं स्टूडेंट नहीं रहती, अभी मैं चलो सुन लिया करती हूँ, और या अपनी पेस पे मैं करती रहूँगी, मैं कौन सा छोड़ रही हूँ। शैतान देखिए ऐसा बहकाता है ना इंसान को कि छोड़ना थोड़ी है तुमने, कौन छोड़ने को कह रहा, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बस अपनी पेस पे करते रहेंगे ना, साथ साथ जॉब भी चलती रहिए भी चलता रहो, दोनों साथ करेंगे। आहिस्ता 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 क्या होता, वो जो नौकरी होती है वो गालिब आ जाती है। अब जाहिर है कुरान से एक दफ़ा एक क्लास स्किप की, फिर आगे फिर दो क्लासेस स्किप की, फिर उसके बाद जाहिर है आप दिल पे गर्द पड़ना शुरू हो गई है, गर्द पड़ना शुरू हो गई है। वो जो दिल की धुलाई हुई भी थी, धुला हुआ था दिल, शफाफ था, अब वो जो आवाज़ अंदर से आ रही थी ना, वो बड़ी स्ट्रांग थी पहले कि नहीं इसको नहीं छोड़ना। अब क्या आ रही, अब तो इतनी क्लासें मिस हो ही गई हैं, अब क्या फ़ायदा, अब मैं जाऊँगी भी तो कौन सा मुझे समझ आने, और मैं तो सबक भी नहीं सुना सकूँगी, मैं तो बहुत काफ़ी पीछे रह गई। अब मेरे ख्याल में जब नया कोर्स स्टार्ट होगा ना, फिर मैं जाऊँगी। चलो फिर उसके इंतज़ार में बैठ जाऊँ, पता नहीं ज़िंदगी इतनी मोहलत दे के ना दे, सेहत इतनी मोहलत दे के ना दे, और वो इस इंतज़ार में चले जाते। तो ये एक रिवायत आपको सुनाती हूँ, इसमें ये है कि अहले बुसरा में आपस में मुजाकरा हो रहा था, बाज़ ने कहा कि इल्म माल से अफजल, बाज़ ने कहा माल इल्म से बेहतर। आखिरकार उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल है, उनकी तरफ एक आदमी भेजा कि आप फैसला करें कि कौन सी चीज़ बेहतर। तो इब्ने अब्बास ने फरमाया कि इल्म जो है वो तो अम्बिया की मीरास है, और माल फिरौनों की। दूसरा ये कि इल्म तेरी हिफाजत करता है, और माल की तो खुद हिफाजत ये करनी पड़ती है। तीसरी बात ये कि अल्लाह ताला इल्म की दौलत, अब ये गौर से सुनिएगा, अल्लाह ताला इल्म की दौलत अपने महबूब बंदों को देता है, और माल सबको ही देता है, चाहे वो उसके पसंदीदा हो चाहे ना पसंदीदा हो, बल्कि जिनसे मोहब्बत नहीं होती उनको माल ज्यादा दे देता है। सूरह ज़ुख़रुफ़ में है ना कि अगर ये बात तय ना होती कि तमाम आदमी एक ही तरीके पर हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला जो कुफर करने वाले हैं उनके घरों की छतों को चांदी की बना देता, और सीढ़ियाँ सोने की बना देता, सीढ़ियाँ भी इस तरह बना देता है फिद्दा, सूरह ज़ुख़रुफ़ में। तो फरमाया फिर के चौथी बात ये कि इल्म खर्च करने से कम नहीं होता, माल कम हो जाता है। पांचवी बात ये कि मालदार मर जाता है तो इसका तज़किरा भी साथ ही ख़त्म हो जाता है, और इल्म वाला फौत हो जाता है तो इसका जिक्र बाकी रहता है। और छठी बात यह कि माल वाला मर जाता है लेकिन इल्म वाला जिंदा रहता है। देखिए आज सहाबा कराम, इमाम बुखारी और आइम्मा कराम, उनका जिक्र आज भी जिंदा है। और इससे पता चलता है कि कितना भी माल आपको मिल जाए, कितना भी माल मिल जाए, लेकिन ये इल्म, इसका मुकाबला कोई माल नहीं कर सकता। हज़रत अली फरमाते हैं लोग तीन तरह के, आलिम और मुतालिम और बाकी आम मखलूक। आलिम और मुतालिम जो है ना, ये तो दोनों निजात के रास्ते पे, और बाकी जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि हर आवाज़ के पीछे चल देते हैं, हर हवा के रुख पे मुड़ जाते हैं, ये घटिया किस्म के लोग तो हर एक आवाज़ के पीछे चल पड़ते हैं। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ तशरीफ़ फरमा थे, तीन आदमी हाजिर हुए, तीन आदमी आए। अब ये देखिए ये स्टूडेंट्स की आपको किस्में यहाँ पे पता चलेंगे। एक ने तो हल्का में थोड़ी सी जगह देखी, वहाँ बैठ गया, दूसरा लोगों के पीछे बैठ गया जाके, और तीसरा उसने देखा इतना रश है, चलो मैं वापस ही चलता हूँ वापस लौट के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू से फारिग हुए तो फरमाया मैं तुम्हें इन तीनों का हाल बताता हूँ। हम हमारे भी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, तीनों तरह के होते हैं, एक आगे बढ़ के आने वाले, एक वो थोड़ा पीछे होके बैठ गए बस, नहीं एक दफा किया तो मैं पीछे ही ठीक हूँ, और कुछ तो चले ही जाते हैं। तो पहले ने तो अल्लाह की तरफ जगह पकड़ ली, तो अल्लाह ने तो उसको अल्लाह ने उसको जगह दे दी। दूसरे ने अल्लाह से हया की ताकि लोगों को तकलीफ ना दे, तो अल्लाह ने भी उससे हया वाला मामला फरमाया, तो वो वहीं बैठ गया वहीं का हो गया। तीसरे ने मुंह फेरा तो अल्लाह ताला ने भी उससे मुंह फेरा। जो उस हल्के से मुंह मोड़ के चला गया, अल्लाह ने भी उसे मुंह। हम उनमें से ना हो जो इस इल्म से मुंह मोड़ने वाले। किसी दाना का कौल है कि दुनिया में अल्लाह की एक जन्नत है, जो उसमें चला गया बस इसके फिर मजे ही मजे। तो पूछा गया कि वो कौन सी मजलिस है, वो कौन सी जगह है जो दुनिया में अल्लाह की जन्नत है। कहा जो इल्म की मजलिस है, इल्म की मजलिस है ना, जैसे हम इस वक्त एक इल्म की मजलिस है, ये दुनिया में अल्लाह की जन्नत है, इसमें मजे ही मजे। तो फिर इसको छोड़ के कौन जाना चाहेगा। जरूर ये अच्छा, एक और हदीस जो आप सब के लिए बहुत ही, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही प्यारी हदीस है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन उलमा की, इल्म वालों की स्याही जो है ना, इंक जिससे आप लिखते हैं अपने नोट्स लिख रहे हैं, अपना इल्म लिख रहे हैं, और शुहदा के खून का मुआजना किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा दोनों को। और हसन बसरी का कॉल है कि फिर उलमा की स्याही भारी हो जाएगी शुहदा के खून पर। ये ना इतनी बड़ी वैल्यू है इन वाले की स्याही की, कि शहीद जो है वो अपनी जान दे के, अपना खून दे के अल्लाह के रास्ते में अपनी सच्चाई को, यानी उसकी तस्दीक करता है, और जो इल्म वाला है उसका कलम चलता है तो उसकी वजह से दुनिया के लोगों की जहालत दूर होती है, कईयों का फायदा होता है। शहीद अपनी जान दे के गवाही देता है कि अल्लाह बहुत बड़ा, और इल्म वाला अपने कलम के जरिए गवाही देता है कि अल्लाह बहुत बड़ा, बशर्ते कि वो ऐसा ना हो कि वो बस नोट्स की सूरत में पढ़ा ही रहे और उसको दीमक खा जाए, उसके बाद कभी खोले ही ना कि हमने कभी लिखा क्या था। लिखने का तो बड़ा शौक हो के भर भर के कॉपियाँ रखे जा रहे हैं, हर जगह लिख रहे हैं, उसके बाद वो पता ही नहीं कि किधर, या उसके बाद पढ़ा ही ना जाए कि मैंने लिखा क्या था। अच्छा ये जो हदीस मैंने आपको पहले ही बताई कि उसका ही आगे कंटिन्यूएशन थोड़ी सी और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस इल्म को इसके उठ जाने से पहले पहले हासिल कर लो। इसका उठ जाना अहले इल्म के ख़त्म होने के जरिए होगा। फिर आपने अपनी बड़ी उंगली और शहादत की उंगली को उठा के फरमाया, ये देखिए ये बड़ी उंगली और शहादत की उंगली दोनों को उठा के फरमाया आलिम और मुतालिम। आलिम और मुतालिम क्या है, मतलब जो टीचर और स्टूडेंट है, एक इल्म देने वाला और एक इल्म लेने वाला, दोनों में भलाई है। इन दो उंगलियों की तरह ये साथी हैं, यानी जिसको इल्म की तलब होती है ना वो इल्म वाले के साथ रहता है, तो ये दोनों उंगलियों की तरह ना ये साथी हैं। अच्छा फिर आगे हदीस सुने, बाकी लोगों में कोई भलाई नहीं है। गौर से सुने, बाकी लोगों में कोई भलाई नहीं है, यानी या तो कोई इल्म सीखने वाला बने या फिर सिखाने वाला बने, लेकिन जो ना सीख रहा है ना सिखा रहा है उसमें कोई भलाई नहीं। चाहे वो बड़ा समझदार समझा जाए, बड़ा PhD है, बड़ा मालदार है, बड़ा नामवर है, बड़ी शोहरत है, बड़ा नेक समझा जाता है, मगर रब की नज़रों में उसका कोई मकाम नहीं। और ये गौर से वो लोग भी सुने जो कहते हैं हम सोशल वर्क करना चाहते हैं, सोशल वर्क बहुत करते हैं, हम इधर जाते हैं, हमारी भाग दौड़ फलानी जगह, गाड़ी ले ले, सारा दिन भागते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अब ये मैं नहीं बता रही आपको, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, आलिम और मुतालिम दोनों में भलाई है और इनके सिवा बाकी लोगों में कोई भलाई नहीं है। ये सबसे पहले आपका अव्वलीन काम क्या है, इल्म सीखने वाले बने, अगर आपको आता है तो सिखाने वाले बने, कुछ तो बने, आता नहीं है तो सीखो, लेकिन किसी एक कैटेगरी में जरूर अपने आप को शामिल रखो। आप बाकी कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपने इस काम को छोड़ दिया ना तो भलाई पे नहीं, चाहे कितने ही आपके सोशल वर्क है। अब इन अपने कामों को भाग दौड़ के अंदर इसको पीछे ना करो, इसको हमेशा नंबर वन प्रायोरिटी पे रहना। उसके बाद आप भले करें जितने आपके पास वक्त है, इंशाल्लाह शौक से करें, लोगों की भी खिदमत करें और भी काम करें, जरूर सोशल वर्क करें, लेकिन इसको छोड़ के नहीं। अच्छा, फिर एक और हदीस इसी तरह की है, दुनिया और दुनिया वाले सब लानत जदा हैं सिवाय सिवाय अल्लाह का जिक्र और उसका दम भरने वाले और आलिम और मुतालिम। सुन लिया आपने, सब के बारे में फरमाया दुनिया और दुनिया वाले सब लानत जदा हैं, मलऊन है। क्या होता है लानत जदा होना, यानी अल्लाह की रहमत से दूर है, अल्लाह की रहमत से महरूम है ये लोग, सिवाय जो अल्लाह का जिक्र करने वाले, उसका दम भरने वाले हैं, जो आलिम है, इल्म देने वाला है या इल्म सीखने वाला है, सिखाने वाला और सीखने वाला। तो आप क्या, किस चीज में भाग दौड़ आपकी ज्यादा होनी चाहिए, फलां की हेल्प कर दूं वो अच्छा काम है, लेकिन इसको छोड़ के नहीं, फलां के लिए मैं कोई चीज बना दूं या फलां के लिए मैं किसी काम आ जाऊं, लेकिन इसको छोड़ के नहीं, क्लास का कोई काम कर लूं, इसको छोड़ के नहीं, पहले ये। हाँ, फिर आपके पास फुर्सत है तो इंशाल्लाह और नेकियां करें, कोई हद नहीं है। और याद रखिएगा हदीस में कि शैतान के लिए एक इल्म वाला 1000 आबिदों से ज्यादा सख्त है, यानी एक इल्म वाले को काबू करना ना उसके लिए, 1000 आबिदों को काबू करना उसके लिए आसान है, एक इल्म वाले को काबू करना उसके लिए मुश्किल है। जितना आपका इल्म बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह, शैतान के लिए काबू करना उतना ही मुश्किल हो। अब इब्ने मसूद का कॉल है, ये फरमाते हैं इल्म जरूर हासिल करो, मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इल्म वालों की इज्जत देखकर अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले भी ख्वाहिश करेंगे कि काश वो उलमा बना के उठाए जाते, काश वो भी इल्म वाले हो। और देखें एक और बहुत अहम हदीस है, तिर्मिज़ी की है, और हारिस फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, देखा कुछ लोग बाज मसलों में झगड़ा कर रहे हैं, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना था, तो जाके हज़रत अली से फरमाया कि ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया इनको क्या हो गया है, ये क्या बातें होने लगी। फरमाने लगे मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सुन लो, खबरदार रहो, अन करीब एक बहुत बड़ा फितना सर उठाएगा। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूलल्लाह इस फितने में निजात कैसे होगी, क्या जरिया निजात होगा, फरमाया अल्लाह की किताब। यानी उस वक्त में भी अल्लाह की किताब थी फितनों में निजात का जरिया, तो आज तो हम इतने बड़े बड़े फितनों को फेस कर रहे हैं, आज हमें निजात कैसे मिलेगी। इस हदीस की रोशनी में देखिए अल्लाह की किताब से। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें तुमसे पहले गुजरे हुए लोगों के हालात हैं, बाद वाले लोगों की खबरें हैं, तुम्हारे आपस के मामलात का फैसला है, ये दो टोक बात है, कोई हंसी दिल लगी नहीं है, यदि कोई भी इसको हंसी दिल लगी समझ के ना आए, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है यहाँ पे, ये हम बोर हो जाते हैं हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, ये एंटरटेनमेंट की बुक नहीं है। जो सरकश इसको छोड़ेगा अल्लाह उसकी कमर तोड़ेगा, जो इसको छोड़ के किसी और बात को जरिया हिदायत बनाएगा अल्लाह उसको गुमराह कर देगा। ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है, ये हिकमत भरी याद दहानी है, यही सिराते मुस्तकीम है, इसके होते हुए ख्वाहिशात गुमराह नहीं करती, जुबाने लड़खड़ाती नहीं है, और इल्म वालों का दिल इससे कभी नहीं भरता, कभी जी नहीं भरता। ये नहीं वो कभी कहते एक दफा पढ़ लिया आप काफी हो गए, इससे तो जी भरेगा ही नहीं। इसको बार बार दोहराने से इसकी ताजगी कभी नहीं जाती। देखिए ये हदीस है और ना कभी पुराना महसूस होता है कि हमने तो 2 दफा 4 दफा 6 दफा पढ़ लिया था। अब लोग बाज करते हैं, हमने 1 दफा पढ़ तो लिया, अब और क्या पढ़ें। ओहो, आप अगर आप ये समझते हैं कि आपने इसको पढ़ लिया, इसके आलिम हो गए, तो बड़ी नादानी है, बहुत बड़ी नादानी है। क्योंकि इल्म वाला जो होता है ना, अहले इल्म, उसका तो जीव से कभी भरता ही नहीं, इसकी ताजगी कभी खत्म होती ही नहीं, ये कभी पुराना होता ही नहीं। इसकी अजायब, ये आगे हदीस है, इसके अजायब कभी खत्म नहीं होंगे। यानी जब पढ़ेंगे ना आप, उसके इसके अजायब और से और आपके सामने निकलते आएंगे, नई से नई बातें आएंगी, ये नया लगेगा। आप ये ना समझे कि फिर दोबारा हम वही कुरान पढ़े, नहीं, समझने दोबारा नए सिरे से पढ़ रहे हैं कि नया एक कुरान पढ़ रहे हैं। यानी यानी जैसे मैंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, इस तरह से दोबारा पढ़े। क्योंकि जब आप ये सोचते ना, मैंने तो पहले भी पढ़ा हुआ, सारा इंटरेस्ट और सारा आपका वो जो जोश और शौक ही खत्म हो जाता था। मुझे तो पहले ही आता है सारा, तो फिर इसका मतलब है कि मुझे आप क्या जरूरत है। अब मैं तो कुछ सुनूं ना सुनूं कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं इसको नया समझ के, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी पुराना नहीं होता, इसके अजायब कभी खत्म नहीं होते। और एक आदमी ने ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बात कही थी कि ये कुरान पढ़ने वाले बड़े पेटू होते हैं, यानी बड़े खाने पीने के शौकीन होते हैं। जैसे आज भी कई लोग कहते हैं ये मुल्ला हैं बड़े ये हलवों के शौकीन और इस तरह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को इतना बुरा माना था कि उससे दोबारा उससे मुंह फेर लिया, और उसने कहा कि मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में ये बात कह रहा था, मैं तो बस ऐसे दिल लगी कह रहा था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उससे कोई बात नहीं सुनी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का कजावा पकड़े हुए पत्थरों पे घिसटता जा रहा था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। तो इसको मजाक या इसके पढ़ने वालों का मजाक का निशाना बनाना, ये ऐसे ही है जैसे कुरान को मजाक का निशाना बनाना। अभी किसी को कहना तुम तो मुलामी हो गई हो, तुम तो बस इसी के पीछे हो गई हो, अभी तुम्हें आया नहीं है, कितनी नालायक हो, बार बार वही पढ़ती जा रही हो। ये आप चाहे मजाक में कह रहे हो, दिल लगी कर रहे हो, ये दिल लगी करने की किताब नहीं है। जिसने इसको छोड़ के किसी और को रहनुमा बनाया ना, अल्लाह उसको गुमराह कर देता है। ये नसीहत है। तो कुछ लोग बस बरकत के हसूल के लिए इसको पढ़ना चाहते हैं या पढ़वाना चाहते हैं, ठीक है, ये उनकी मोहब्बत है, मोहब्बत अपनी जगह है। मगर इस कुरान को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये अज़िक्र है, ज़िक्र याद दिहानी, नसीहत। तो जिसका नाम ही नसीहत है, उसे नसीहत ही नहीं अगर मिल रही तो फिर क्या फायदा। सिर्फ आप मोहब्बत ही करते जा रहे हैं, असल मकसद ही उसका था कि आप इसे नसीहत लें। तो और नसीहत लेके फिर अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करें, और आप देखेंगे, फील करेंगे कि जब आप इसकी मजलिस में होते हैं तो ईमान की, दिल की कैफियत बहुत बदली हुई होती है, और जब 2 दिन 4 दिन 6 दिन इसे दूर रहते हैं तो कैफियत मुख्तलिफ हो जाती है। तो इससे जब तक आप नसीहत लेते रहेंगे ना, ये आपको देता रहेगा। इसको छोड़ देंगे तो ये नसीहत करना भी छोड़ देंगे। तो जो सही रास्ते पे सिरात मुस्तकीम पे चलना चाहता है वो इसकी तरफ आए। ये है, ये कुरान है सिरात मुस्तकीम, ये है सीधा रास्ता, यही आपको रहनुमाई करेगा।
सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।